శేషైతన్యమనోభీష్టం సాపి సంగేన భూతలే శయం రూపకదామయ దదాతి స్వపదం ప్రియం వందేహం శ్రీగురుశ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురం వైష్ణవం శ్రీరూపం సాగ్రదాతం సగణ రఘునాథం నితం సంత జీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిణమ సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధాకృష్ణ బాలం సగణ లలిత శ్రీ విశాఖానితం హే కృష్ణ కరుణాసింద దీనబంధో జగత్పతే గోపికాకంప రాధాకంపకందన గౌరంగి రాధే వృందావనేశ్వరీ విశ్వభానుసృతే దేవి ప్రణమామి హరి వంశాకల్పతరుభ్యుపాసింధుతానం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో 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 మావరంగాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయ కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నమే గౌరవిత నమో జయ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద గదాధర శివాసాది గౌరవక్షవృంద హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 హరి రామ హరి రామ 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 హరి హరి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరి 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 రామ హరి రామ 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 హరి
आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मित्र वृंद हम कल भगवान श्री कृष्ण के देवकी के हृदय में आविष्ट होने के पश्चात देवकी के शरीर से जो ज्योति निकल रही थी उससे प्रभावित होकर कंस समझ गया कि भगवान हरि देवकी के उदर में है तो उसके संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे थे और कंस उस समय क्या करेगा उसके संबंध में सोच रहा था कि जब उसका शत्रु अब देवकी के उदर में है तो इस समय वह शत्रु का वध कर देगा या शत्रु के जन्म की प्रतीक्षा करेगा इस प्रकार सोचते हुए उसका उसके विवेक का उदय हुआ है भगवान ने उसके विवेक का उदय करा दिया जिससे कंस सोच रहा है कि इस अवस्था में देवकी का वध करना उचित नहीं है क्योंकि देवकी एक तो स्त्री है द्वितीयतः उसकी भगिनी है और तृतीयतः गर्भवती है तो इस अवस्था में यदि किसी स्त्री का वध किया जाए तो इसमें इहलोक और परलोक नष्ट हो जाता है और इस प्रकार का निशंस व्यक्ति इस संसार में जीवित होते हुए भी मृत समझा जाता है क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति की निंदा संसार के सारे लोग करते हैं और मृत्यु के पश्चात भी उसकी निंदा लोग करते हैं और उसके साथ साथ मृत्यु के पश्चात वो प्रवेश करता है, नर्क कष्ट को भी भोग करता है। तो इस प्रकार सोचते हुए कंस इति घोर प्रमाद भावा सन्निवृत्त स्वयं प्रभु। तो इस प्रकार सोचते हुए जो नृशंस कार्य कंस करने जा रहा था उससे निवृत्त हो गया, क्योंकि अभी तक उन्होंने देवकी के 6 संतानों को मार डाला है। तो अब ये जो अष्टम गर्भ जो उसका शत्रु इसमें जन्म लेने वाला है, तो उसको मारने से कंस निवृत्त हो गया, क्योंकि इस प्रकार सोचते हुए कि उसका यह लोक और परलोक नष्ट हो जाएगा और यश भी नष्ट हो जाएगा। तो कंस ने सोचा कि वस्तुतः जब शत्रु गर्भ में है, उसका जन्म नहीं हुआ है, उसको मारने में कोई बहादुरी नहीं है, ये विरोधित कार्य नहीं है। जब शत्रु का जन्म हो और वो बड़ा हो तो उसके साथ युद्ध करने में ये विरोध प्रदर्शित होता है। तो शत्रु के साथ युद्ध करने से यदि कोई विजय को प्राप्त करता है तो उसका यश सारमूर परिव्याप्त होता है, और यदि वो युद्ध में मृत्यु को वरण करता है तो वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, तो इससे उसको कोई हानि नहीं। इस प्रकार सोचते हुए कंस निवृत्त हो गया देवकी का वध करने से। आस्ते प्रतीक्षा जन्म हरेर वैरान बंध। तो फिर कंस सोचने लगा कि अब जब मैं देवकी का वध नहीं करूंगा तो अब तो एकमात्र उपाय है कि मेरे शत्रु के जन्म की मुझे प्रतीक्षा करना होगा। तो यद्यपि भगवान हरि को वो शत्रु के रूप में समझ रहा था, किंतु वस्तुतः भगवान हरि किसी के शत्रु नहीं थे, वो सबके मित्र है। समहं सर्वभूतेषु, वो सुर असुर सबके प्रति संभाव पोषण करता है। किंतु जब ये असुर लोग भक्तों पर अत्याचार करने लगते हैं, पापाचार करने लगते हैं, इसलिए उनको दंड देकर उनका वध करके भगवान उन पर कृपा ही करते हैं, जिससे कि वो अधिक पापाचरण नहीं कर सके। और भगवान इस प्रकार असुरों पर कृपा करते हैं, जिन असुरों को स्वयं वध करते हैं उनको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो इससे असुरों को भी लाभ हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान सर्व मंगलमय, सबके मंगल की चिंता ही करते हैं, कल्याण की चिंता ही करते हैं, किंतु कंस उसी भगवान को अपना शत्रु मान रहा था। और इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रु भाव का पोषण करते हुए कंस ने भगवान के जन्म की प्रतीक्षा उसने किया। तो इस प्रकार जब कंस प्रतीक्षा कर रहा है भगवान के जन्म की, आसिन संविष्टन भुंजान जतन मही चिंतयान ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयन जगत। तो जब अब कंस को भय सताने लगा, जिस शत्रु की अष्टम गर्भ की वो प्रतीक्षा कर रहा था इतने दिनों से, अब वो अष्टम गर्भ उसके सम्मुख है और वो देख रहा है कि किस प्रकार भगवान के देवकी के उदर में होने से देवकी के शरीर से ज्योति निकल रही है भगवान के प्रभाव, और देवकी अत्यधिक सुंदर दिख रही है। उसके मन से भय दूरीभूत हो गया। देवकी को अब कंस का उतना भय नहीं है, क्योंकि वो आश्वस्त हो चुकी थी कि भगवान अब मेरे उदर में है तो अवश्य भगवान इस कंस का विनाश करेंगे। इसलिए स्मित हस्त कर रही थी, जब कलम उसकी चर्चा कर रहे थे, किंतु कंस के मन में अब भय प्रविष्ट हो गया। कि अब मेरा शत्रु आ गया है। इसलिए सदा सर्वदा कंस अपने शत्रु भगवान के बारे में सोचने लगा। तो आसीन जब कंस बैठा हुआ होता है तो उस भगवान हरि के बारे में सोच रहा है। जब वह सम्मिस जब सोया हुआ है, लेटा हुआ है सोया पर, उस समय भी उस भगवान हरि के संबंध में चिंता कर रहा है। और जब पिष्ट जब कहीं स्थित है, कहीं खड़ा है, कहीं बैठा है, उस समय भी खड़े खड़े में चिंता कर रहा है, क्योंकि भय प्रविष्ट हो गया है उसके मन में, हरि का भय, भगवान का भय। तो भगवान उसका वध करने वाले हैं और जो जिनको ये शत्रु के रूप में मान रहा है उन्हीं का भय उसके मन में प्रविष्ट कर गया है। इसलिए कंस हर समय अपने शत्रु हरि के संबंध में चिंता कर रहा है। भुंजा जब खा रहा है कंस, उस समय भी उस हरि के बारे में, शत्रु के बारे में सोच रहा है। खाते समय, सोते समय, बैठते समय, पर्यटन महीन जब घूम रहा है, तो जब घूम रहा है इधर उधर जाता है, उस समय भी सोचने लगता है भगवान के बारे में। चिंतया ऋषिकेश अपश्यत तन्मय, तो उस भगवान ऋषिकेश, भगवान को यहाँ पर ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वो भगवान ऋषि का ईश्वर, ऋषि का अर्थात इंद्रियां, ये समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। तो अब कंस उन ऋषिकेश भगवान हरि के संबंध में चिंता कर रहा है कि जो भगवान कंस की इंद्रियों के भी ईश्वर है, प्रभु है। इसलिए ये कंस भगवान के बारे में सोच रहा है, किंतु किस भाव से सोच रहा है? शत्रु भाव से सोच रहा है। ये भगवान के रूप में भक्ति भाव से सोच नहीं रहा, जबकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण यही उपदेश देते हैं उनके बारे में सोचने के लिए। मन मना भव मद भक्तो मध्यादिमंग नमस्कुरु मामे वशि सत्यंते प्रति जान प्रियोश। तो भगवान कह रहे हैं कि सदा सर्वदा तुम्हारे मन को मुझे अर्पित करो, अर्थात तुम्हारे मन में मेरे बारे में सोचो, मेरी चिंता करो, मेरे रूप, मेरे गुण, मेरी लीलाओं के संबंध में चिंता करो। यही सबसे श्रेष्ठ चिंतनीय विषय है, भगवान के बारे में सोचना ये सबसे श्रेष्ठ चिंतनीय विषय है। किंतु अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्ति उत्तमा, स्वरूप गोस्वामी कहते हैं कि अनुकूल भाव से भगवान कृष्ण के संबंध में जब कोई व्यक्ति सोचता है तो वो भक्ति कही जाती है, उसको भक्ति कहते हैं। किंतु जब प्रतिकूल भाव से कृष्ण के बारे में सोचता है तो वो भक्ति नहीं कही जाती। जिस प्रकार अब कंस सोच रहा है, भगवान के बारे में सोच रहा है किंतु अनुकूल भाव से नहीं, प्रतिकूल भाव से सोच रहा है, भगवान को शत्रु मानकर उनके बारे में सोच रहा है, भयभीत होकर सोच रहा है। इसलिए कंस की चिंता ये भक्ति की कोटि में नहीं आती। तो यही भक्त और अभक्त में अंतर, जो भक्तजन होते हैं ये भगवान को अपना प्रभु मानते हैं, अपना रक्षक मानते हैं और उनके संबंध में चिंता करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो उससे क्या होता है? भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्यादिमंग नमस्कुरु, सदा सर्वदा मन में मेरी चिंता करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रेम पूर्वक प्रणाम करो। इस प्रकार मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि अंत में तुम मुझको ही प्राप्त करो। तो इस प्रकार भक्ति का आचरण करने से भक्त लोग भगवान को प्राप्त होते हैं, उनके धाम को प्राप्त होते हैं। किंतु असुर लोग, अभक्त लोग ये भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, यद्यपि वो भगवान के बारे में सोचते हैं शत्रु के रूप में, जिस प्रकार कंस सोच रहा है। इसलिए जो परम लाभ है भगवान को प्राप्त करने का लाभ, इससे ये वंचित हो जाते हैं असुर लोग। यही उनकी मूर्खता, ये सोचने का काम असुर लोग भी कर रहे हैं जैसे कंस कर रहा है, किंतु अनुकूल भाव से नहीं सोच रहे हैं भगवान के बारे में, शत्रु के रूप में सोच रहे हैं, प्रतिकूल भाव से सोच रहे हैं। इसलिए भगवान को प्राप्त करने से ये वंचित हो जाते हैं असुर लोग। तो कंस की अवस्था वही हुई, यद्यपि कंस सोते समय, खाते समय, बैठते समय, उठते समय, चलते समय भगवान के बारे में ही सोच रहा, किंतु भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर रहा। तो ये मुक्ति पद क्या है उसका, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो इस प्रकार कंस ये भगवान को प्राप्त नहीं हो सका, केवल शत्रुता का आचरण कर सका और भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा संत। इस प्रकार अपक्षत तन्मयन जगत, और इस प्रकार भगवान के बारे में सोचते सोचते उसको ये जगत कृष्णमय ही दिखाई पड़ा। वो जहां देखता है, जहां दृष्टि डालता है, तो उस भगवान को देखता है, कृष्ण को देखता है, किंतु भक्ति भाव से नहीं, शत्रु भाव से देख रहा है, ये मेरा शत्रु है, कहीं भी उसकी दृष्टि पड़ती है। तो जैसे भगवान कृष्ण उनके मन में, उसके मन में प्रविष्ट हो गए, सदा सदा कृष्ण के बारे में सोच रहा है, इसलिए सारा जगत कृष्णमय उसके लिए हो गया। तो इस प्रकार कंस भगवान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था कि भगवान जन्म होने के पश्चात वो उनका वध कर देगा, यही सोचकर वो प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि उसके मन में भय बैठा हुआ था कि हो सकता है कि भगवान मेरा वध कर दे, क्योंकि यह आकाशवाणी हुई है कि देवकी का अष्टम गर्भ कंस के वध का कारण बनेगा, इसलिए भय भी उसके मन में था। यद्यपि वो सोच रहा था असुरी की प्रवृत्ति के कारण कि वो भगवान का वध कर देगा, किंतु उसके मन में ये भय बना हुआ था कि भगवान उसका वध कर सकते, इसलिए मृत्यु का भय उसको सता रहा था। तो अब जब कंस इस प्रकार की स्थिति में था और देवकी के गर्भ में भगवान आ चुके थे और देवकी इस प्रकार भगवान को धारण करते हुए अपने सौभाग्य का विस्तार कर रही थी, तो उसी समय देवगण, देवता लोग ब्रह्मा और शिव जी को साथ में लेकर उस गृह में आए जहां पर देवकी बंदिनी थी और भगवान को अपने गर्भ में धारण कर वहां अवस्थान कर रही थी। तो ये ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवगण ये अदृश्य रूप में आए उस स्थान पर, और जो भगवान देवकी के गर्भ में स्थित थे उनकी स्तुति करने लगे देवगण। तो ये देवताओं की स्तुति बहुत प्रसिद्ध है, देव स्तुति, गर्भ स्तुति उसको कहा जाता है। तो देवगण भगवान से, भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि सत्य व्रतं सत्य परं श्री सत्यम सत्यस्य योनि निहितं सत्य सत्यस्य सत्यं सत्यं रिपसत्य नेत्रं सत्यात्मकं शरणं प्रपन्नः। तो देवगण भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु आप सत्य व्रत, अर्थात आप जो व्रत करते हैं या प्रतिज्ञा करते हैं उसकी रक्षा आप अवश्य करते हैं, इसलिए आप सत्य व्रत। तो भगवान की प्रतिज्ञा क्या है कि भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। भगवत गीता में भगवान की प्रतिज्ञा है, वो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन प्रतिजाने नामे भक्ता प्रणश्य, अर्जुन तुम दृढ़ता पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, मैं अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करता हूं। अनन्य चिंतयंतो मां ये जाना परिपात से तेसा नित्याभियुक्तान योगक्षेम बहाम। तो भगवान की ये और एक प्रतिज्ञा है कि जो भक्तगण अनन्य रूप से मेरी ही चिंता करते हैं और मेरी ही पूजा करते हैं और किसी की नहीं, एकमात्र मेरी ही चिंता करते हैं और मेरी ही पूजा करते हैं, ऐसे भक्तगणों का योगक्षेम में वहन करता हूं, अर्थात उनके पास जो है उसको सुरक्षा प्रदान करता हूं और उनका जो अभाव है उस अभाव को पूर्ण करता हूं। जिस प्रकार भगवान की प्रतिज्ञा है और भगवान अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा अवश्य करते हैं, और ये देखा गया है कि जब जब भक्तों के जीवन में संकट उपस्थित हुआ है तो भगवान भक्तों की रक्षा किस प्रकार करते हैं। पांडवों के जीवन में तो ये बहुत बार देखा गया है, जहां असंभव भी भगवान संभव कर देते हैं भक्तों के लिए। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था कुरु राजसभा में, उसको उलग्न करने की चेष्टा की जा रही थी, तब द्रौपदी व्याकुल होकर भगवान कृष्ण को पुकारने लगे और भगवान कृष्ण ने असंख्य वस्त्र प्रदान करके द्रौपदी की लज्जा का निवारण किया। पांडवों के वनवास काल में इस प्रकार अनेक विपत्तियों से भगवान ने उनकी रक्षा की थी और बाद में उनको ये कुरु राज्य भी प्रदान किया था, जिस राज्य को कौरवों ने छीन लिया था उनसे कपट द्वित क्रीड़ा के द्वारा, उसको भी बाद में प्रदान किया भगवान। और पांडवों को इतना ऐश्वर्य प्रदान किया भगवान ने कि युधिष्ठिर महाराज का ऐश्वर्य यहां तक कि स्वर्ग के राजा इंद्र के ऐश्वर्य से बढ़कर था। स्वर्ग के राजा इंद्र भी ईर्ष्या करते थे युधिष्ठिर महाराज के ऐश्वर्यों को देखकर। तो जिन पर भगवान की कृपा होती है उसका कोई अभाव नहीं रहता। तो इस प्रकार भगवान सत्य व्रत, वो अपने व्रत या प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए उनको सत्य व्रत कहा गया है। सत्य परम, और भगवान परम सत्य है। इस संसार में हम आपेक्षिक सत्य को देखते हैं, किंतु भगवान समस्त सत्यों में परम सत्य है। इस संसार में कभी कभी देखा जाता है आज जो सत्य है कल वो मिथ्या भी हो सकता है, इसको आपेक्षिक सत्य कहते हैं, या स्थान काल पात्र के अनुसार ये बदल भी जाता है, किंतु भगवान कभी नहीं बदलते, वो परम सत्य है। ये त्रिकाल सत्य है, भूत भविष्य और वर्तमान में वो सत्य है, और उनकी जो वाणी है ये भी त्रिकाल सत्य है, इसलिए भगवान को परम सत्य कहा गया। जिस प्रकार भगवान की मुख निश्चित वाणी भगवत गीता, तो ये भगवत गीता का उपदेश भगवान ने ये द्वापर के अंत में प्रदान किया 5000 वर्ष पहले, किंतु आज भी भगवत गीता का उपदेश प्रासंगिक है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भगवत गीता का उपदेश अब पुराना हो गया है, अब हम कुछ नए उपदेशों को ढूंढें या नया उपदेश खोजें। आज के युग में ये प्रासंगिक नहीं है, ऐसा कोई नहीं करता। यद्यपि भगवत गीता का उपदेश 5000 वर्ष पहले दिया गया है और 5000 वर्ष के पश्चात आज भी भगवत गीता के उपदेश प्रासंगिक है, और केवल आज नहीं भविष्य में भी ये प्रासंगिक रहेगा। इसलिए भगवान परम सत्य है और उनकी वाणी भी परम सत्य है, ये कभी बदलता नहीं। और त्रिसत्यम, और भगवान ये सृष्टि के प्रारंभ में थे, जब ये भौतिक सृष्टि नहीं हुई थी उस समय भगवान थे, जब ये सृष्टि हुई उस समय भगवान उपस्थित थे, और सृष्टि के विनाश के पश्चात प्रलय के पश्चात भी भगवान उपस्थित रहेंगे। इसलिए त्रिकाल में वो सत्य, त्रिसत्य, त्रिकाल सत्य, ये तीन अवस्था में भगवान उपस्थित रहते हैं। ये भौतिक सृष्टि नष्ट हो जाती है, सारे जीव ये प्रलय के गर्भ में नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि जीव नष्ट नहीं होते हैं, ये महाविष्णु के गर्भ में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, ये आत्मा भी सत्य है क्योंकि भगवान का अंश है। फिर भी ये जीव महाविष्णु के गर्भ में लीन हो जाते हैं, पुनः जब सृष्टि प्रारंभ होती है तब ये जीवगण पुनः आते हैं, शरीर धारण करते हैं, किंतु भगवान हर अवस्था में उपस्थित, सृष्टि के पहले, सृष्टि के मध्य में और सृष्टि के अंत, सृष्टि के बाद भी वो उपस्थित है। सत्यस्य योनि निहितं सत्य, और ये संसार में जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक उपादान है, ये भी सत्य है, किंतु ये अपेक्षिक सत्य है। जिस प्रकार मायावादी लोग कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वे कहते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और ये सारा जगत मिथ्या है, किंतु वस्तुतः ये ठीक नहीं है। ये जगत को जब हम देख रहे हैं और जगत की उपस्थिति को हम अनुभव कर रहे हैं, तो ये मिथ्या कैसे हो सकता है? इसलिए वैष्णव गण ये जगत को मिथ्या नहीं मानते, ये जगत भी सत्य है, क्योंकि जगत की स्थिति है, किंतु ये जगत अस्थाई अनित्य है। यद्यपि यह सत्य है फिर भी अनित्य, यही अंतर है। तो ये जगत में जो भी भौतिक उपादान है ये सत्य है, और ये कहां से उद्भूत होते हैं, ये जगत कहां से उद्भूत होता है? भगवान, भगवान ही इसके मूल कारण, अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन सेवां बुद्धा भाव समन्विता। तो मैं ही सारे भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं के स्रोत, भगवान कहते हैं, मुझसे ये सब निकलते हैं, जितने भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि, भौतिक उपादान और आध्यात्मिक उपादान, ये मुझसे ही निकलते हैं। और यह जानकर जो बुद्धा अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति ये भाव समन्वित होकर मेरा ही भजन करता है, मेरा ही भक्ति करता है, मैं सबका कारण, सर्व कारण कारण, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी यही प्रार्थना करते हैं भगवान, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, ये सारे कारणों के परम कारण, मूल कारण है भगवान श्री कृष्ण। सत्यस्य योनि नहीं प्रयुक्त सकते और वही भगवान से ये सारी भौतिक सृष्टि उद्भूत होती है जो कि सत्य है किंतु नित्य नहीं अनित्य संसार और उस सृष्टि में हर कण में भगवान प्रविष्ट होते नहीं तो सकते और किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं परमात्मा के रूप में हर जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट होते हैं और हर अणु परमाणु में भी परिव्याप्त होते हैं भगवान इसलिए ये जो भौतिक सृष्टि भी भगवान से भिन्न नहीं है किंतु भगवान इस भौतिक सृष्टि के भीतर है फिर भी वो भीतर नहीं है यही भगवान की अचिंत शक्ति इस सृष्टि के भीतर होते हुए भी फिर भी नहीं है अर्थात यद्य भी भगवान हर अणु परमाणु में व्याप्त है किंतु हम हर अणु परमाणु को भगवान नहीं मान सकते यद्यपि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में व्याप्त है फिर भी हम हर व्यक्ति को भगवान नहीं कह सकते यही भगवान की अत्यंत शक्ति इसलिए कोई बद्ध जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता कभी कभी कुछ मूर्ख व्यक्ति किसी बद्ध जीव किसी व्यक्ति को भगवान बना देते हैं या भगवान के रूप में संबोधित करते हैं और कभी कभी कुछ मूर्ख व्यक्ति अपने को भगवान भी घोषित कर देता है ये उनकी मूर्खता मात्र कोई भी जीव भगवान नहीं बन सकता और कल हम बता रहे थे भगवान के छह ऐश्वर्य तो कोई भी जीव में ये छह ऐश्वर्य नहीं हो सकता क्योंकि भगवान सर ऐश्वर्यपूर्ण सबसे सुंदर है क्या इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने को भगवान घोषित करता है वो सबसे सुंदर व्यक्ति है वो सबसे बलवान है सबसे ऐश्वर्यशाली है सबसे ज्ञानवान है और वैराग्यवान है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कभी कभी कुछ मूर्ख लोग जब कभी कोई योग सिद्धि का प्रदर्शन कोई कर देता है आश्चर्य घटना प्रदर्शित कर देता है तो लोग उसको भगवान मानने लगते हैं तो इस प्रकार ये योग सिद्धि के बल पर भी कोई भगवान नहीं बन सकता क्योंकि ये योग सिद्धि भी भौतिक सिद्धि है तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने को भगवान घोषित करता है तो उसका आप पूछिए उसको कहिए कि वो अपना विश्वरूप प्रदर्शन करे ये लोग ऐसा नहीं कर सकते कुछ योग सिद्धियां हैं उसको प्रदर्शित कर सकते हैं तो अपने को बहुत भारी बना सकते हैं क्या अपने को बहुत हल्का बना सकते हैं किसी को सम्मोहित कर सकते हैं या एक प्राप्ति सिद्धि है एक जगह बैठकर किसी स्थान से किसी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं ये सब भौतिक सिद्धियां हैं इससे कोई भगवान नहीं बन जाता और ये सिद्धियां भी भगवान से ही प्राप्त करते हैं ये लोग इसलिए हम लोगों को ये जानना चाहिए कि जिस किसी व्यक्ति को भगवान मानना ये केवल मूर्खता है साधारण व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता केवल भगवान जिनके ये छह ऐश्वर्य हैं वही केवल परम पुरुष भगवान तो यहां पर कहा जाता है कि भगवान हर अणु परमाणु में व्याप्त हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निहित है फिर भी हर व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता यद्यपि भगवान उसके हृदय में सत्य सत्यंगित सत्य नेत्र सत्यात्मक शरण प्रसन्न इसलिए वो भगवान समस्त सत्यों के जो अपेक्षित सत्य है संसार में उसके मूल कारण सत्य से सत्य परम सत्य और रीत सत्य नेत्र तो ये सारे इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान, इसलिए इनको ऋषिकेश भी कहा गया। और इनका जो शरीर है ये सत्यात्मकम, ये भगवान का जो रूप है ये सत चित और आनंदमय रूप है, इसलिए भगवान सत्यात्मक। इनका रूप कभी विनष्ट होने वाला नहीं है। भगवान भगवान का जो शरीर है ये नष्ट होने वाला नहीं है। हम लोगों का शरीर नष्ट हो जाता है क्योंकि ये भौतिक शरीर है, किंतु भगवान का शरीर नित्य है और उनका ज्ञान भी नित्य है, शाश्वत है, परम सत्य है भगवान का ज्ञान। और वो आनंदमय है, सारे आनंद के स्रोत भगवान। उनके आनंद कभी निरानंद में परिणत नहीं होता, हमारे भौतिक संसार में आनंद निरानंद में परिणत हो जाता, क्योंकि हम लोग जो आनंद का अनुभव करते हैं इस भौतिक संसार में ये वस्तुतः आनंद नहीं, ये माया सुख, ये आनंद जैसा सुख जैसा प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः सुख नहीं। ये शास्त्र में बताया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को लेकर जल में डुबाया जाए, तो जल में उसको डुबा करके रखने से उसको कष्ट होगा और थोड़े समय के लिए उसको ऊपर उठा दे तो उसी समय वो सांस ले सकता है। तो जब सांस लेता है उसके कष्ट थोड़े समय के लिए लाघव हो जाता है, फिर उसको पानी में डुबाया जाए तो फिर उसको कष्ट होता है। तो थोड़े समय के लिए जब उसको ऊपर उठाया जाता है वो सांस ले सकता है और उसके कष्ट लाघव हो जाता है, उसी को वो सुख मानता है। आ बहुत अच्छा, थोड़ा सांस ले सकने में समर्थ हुआ। तो ये भौतिक संसार का सुख ही ऐसा कि अनंत दुख भोग करते करते थोड़े समय के लिए दुख लाघव हो गया, कम हो गया और उसी को हम सुख मान बैठते हैं, इसलिए इसको माया सुख बताया गया। वस्तुतः यहाँ नित्य सुख प्राप्त नहीं है भौतिक संसार में, क्योंकि ये दुखालयम अश्वासतम, ये दुख का घर है अनित्य संसार। और वो नित्य सुख नित्य आनंद तब हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम इस भौतिक संसार से मुक्त होकर वो नित्य धाम, चिन्मय संसार, चिन्मय धाम, आध्यात्मिक जगत, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान के धाम में हम नित्य सुख नित्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान नित्य आनंदमय, आनंदमय अभ्यास, समस्त आनंद के वो परम स्रोत। इसलिए भगवान के धाम में कोई दुखी नहीं है, वहां पर जितने भक्त रहते हैं भगवान के धाम में कोई भी दुखी नहीं है। लोग सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे है, वहां न तो जन्म है न मृत्यु है न वृद्धावस्था है और न रोग है। भगवान के धाम में जितने भी भक्त रहते हैं नित्य नवजौवन, भगवान जिस प्रकार सदा सर्वदा युवावस्था में दिखते हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं, तो भगवान के धाम में जितने भक्त हैं सब नवयौवन, सदा सर्वदा युवावस्था में है और बहुत सुंदर। हम लोग यहाँ सुंदर बनने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, यदि हम सुंदर नहीं है तो अपने को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और कितने तरह के कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं सुंदर बनने के लिए, और कभी कभी यही हमारा काल भी हो जाता है। कल हम देख रहे थे समाचार पत्र में कोई स्त्री बाल पक गए हैं तो बाल को केमिकल से रंग दे रही थी तो बाल झड़ने लगे, तो उसके मस्तक में बाल नहीं रहे तो स्त्री कैसा सुंदर दिखेगी। तो ये सब हम जितना जितनी कृत्रिम वस्तुएं हैं उसको व्यवहार करते हैं सुंदर दिखने के लिए, हमें सुंदर नहीं बना सकता। वस्तुतः यदि हम सुंदर बनना चाहते हैं सदा सर्वदा युवावस्था में रहते हैं, रहना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें भगवान कृष्ण की शरण में जाना है, उनकी भक्ति करना है, उनका भक्त बनना है, तब हम इस प्रकार नित्य जीवन को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा ये संभव नहीं। बार बार हम इस भौतिक संसार में जन्म लेंगे और बार बार इस जन्म मृत्यु द्वारा व्यधि रूप में कष्ट को भोग करेंगे, ये भौतिक संसार का नियम है, हम इसको रोक नहीं सकते। तो इस प्रकार ये देवगण भगवान की शरण में जा रहे हैं। क्यों शरण में जा रहे हैं? क्योंकि भगवान सत्यात्मक है, परम सत्य है। ब्रह्मा शिव इंद्रादि देवगण अब भगवान की शरण में जा रहे हैं। तो हम लोग साधारण जीव, हम कहते हैं नहीं नहीं हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। ऐसे बद्ध जीव जो मूर्ख होते हैं कहते नहीं नहीं भगवान नहीं है। तो इस प्रकार मूर्खता से बचना चाहिए। यदि हम अपने लिए दुर्भाग्य को निमंत्रित करना नहीं चाहते हैं, तो जिस प्रकार ब्रह्मा शिव आदि देवगण भगवान की शरण में जा रहे हैं, तो उनका पदांग अनुसरण करते हुए हमें भी भगवान की शरण में जाना चाहिए, जिससे हमारा इहलोक और परलोक मंगलप्रद होगा, कल्याण होगा हमारा। वस्तु तो हमारा क्या कल्याण है हम नहीं जानते, इसलिए इस भौतिक जगत में हम कष्ट भोगते रहे। तो ये देवगण इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हुए हमारे लिए ये मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं। महाजनोदयेन गतस्य पन्था। तो वस्तुतः मार्ग क्या है, किस मार्ग पर चलना चाहिए, ना महाजनगण जिस मार्ग पर गए हैं उसी मार्ग पर उनका पदांग अनुसरण करते हुए जाना चाहिए। ये परीक्षित मार्ग है, ये टेस्टेड मार्ग है। तो ये ब्रह्मा शिव आदि जिस मार्ग में जा रहे हैं, जिस भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो हमें भी उसी भगवान की स्तुति करनी चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए, उनका नाम कीर्तन करना चाहिए। यही एकमात्र मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो ये देवगण पुनः भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, त्वयि अम्बुजाक्ष अखिल सत्व धाम्नि समाधिनावेश चेतसैके तत्पाद पुत्रेन महत्पुत्रेन कुर्वन्ति गोवत्स पदं भवाः। तो देवगण कह रहे हैं कि हे प्रभु, त्वयि अम्बुजाक्ष, क्योंकि भगवान की जो आंखें हैं ये अम्बुज के समान है। अम्बुज अर्थात अम्बु अर्थात जल, जल से जो उत्पन्न होता है कमल, तो भगवान की आंखें कमल पुष्प के समान, कमल पुष्प की पंखुड़ियों के समान, बहुत सुंदर आंखें। तो ये देवगण भगवान को अम्बुजाक्ष के रूप में संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अम्बुजाक्ष, आप सत्तर धाम ने ये आप समस्त भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि के मूल कारण है, मूल आश्रय है। आपके आश्रय में ये भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि रहती है, अर्थात आप इसके मूल कारण है। आपसे ही आध्यात्मिक सृष्टि और भौतिक सृष्टि संभव होती है, आप ही इस भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि के आश्रय स्थल है। इसलिए समाधि ना देश सही के तो जो महत्जन है इस समाधि में आपका ही ध्यान करते हैं, समाधि में अपने मन को आपके ध्यान में केंद्रित करते हैं, क्योंकि आप सबके मूल कारण मूल आश्रय तत्पाद होते न महत्वते न। और इस प्रकार आपका ध्यान करते हुए आपके चरण की शरण ग्रहण करते हुए ये लोग क्या करते हैं, कुर्वन्ति गोवत्स पदं भवाभि, क्योंकि ये महत्वगण ये भक्तगण आपके चरण कमल रूपी नौका का संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार सागर को पार करना ही संसार सागर के समान है। जिस प्रकार सागर को पार करना अत्यंत कष्ट साध्य है, क्योंकि सागर में बहुत बड़ी बड़ी तरंगे उठती हैं, लहरियां उठती हैं, इसलिए सरलता पूर्वक नौका लेकर सागर में जाना भी संभव नहीं। और उसके साथ साथ सागर में ऐसे हिंसक जलचर जीव हैं, कभी कभी कोई जहाज में जाता है तो बड़े बड़े तिमिंगल है समुद्र जो जहाज को भी निगल जाता है। इसलिए सागर को पार करना इतना सरल नहीं है। और कभी कभी कोई नौका या जहाज में जा रहा है सागर में तो आंधी तूफान आ जाती है, जिससे जहाज भी डूब जाता है सागर में। तो इसलिए सागर को पार करना बहुत दुरूह व्यापार है। तो उसी प्रकार ये जो संसार है, ये संसार एक सागर के सदृश, संसार सागर को पार करना इतना सरल नहीं है। किंतु जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय ग्रहण किया है, तो भगवान के चरण कमल रूपी नौका एक ऐसी नौका है जिसका आश्रय ग्रहण करने से व्यक्ति इस संसार सागर को अति सरलता पूर्वक पार कर जाता है। तो ये कैसे संभव होता है? ना उन भक्तों के लिए ये संसार सागर का जल जो अत्यंत अथाह सागर है, जिस जल की था व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती, उस अथाह सागर का जल ये वस्त्र पद के समान हो जाता है, वस्त्र पद जल के समान हो जाता है। तो वस्त्र पद क्या है? जिस प्रकार